लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। आने वाले कल की डींग मत मारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक ही दिन में क्या होगा। दूसरे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम अपनी प्रशंसा मत करो। तुम्हारा मुख नहीं बल्कि पराए व्यक्ति ऐसा करें। पत्थर भारी होता है और बालू वजनदार, किंतु मूर्ख का क्रोध इनसे अधिक भारी होता है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 27वें अध्याय के प्रथम 3 पद। विगत सप्ताह हमने इस अध्याय के पहले 2 पदों की व्याख्या कर पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 27 पदों वाला 27वां अध्याय भी इस ग्रंथ के अन्य अध्यायों की तरह ही जीवन उपयोगी परामर्शों से भरा है। 27वें अध्याय में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि किसी भी प्रकार का अहंकार जोखिम भरा होता है। इस अध्याय में राजा सुलेमान अपने सुपुत्रों को शिक्षा देते हैं कि मूर्ख, आलसी और दुष्ट व्यक्ति को लगातार हमले सहने पड़ते हैं, इसलिए वे इन दुर्गुणों से बचें। इनके विपरीत ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति तथा पड़ोसी के प्रति सच्चा प्रेम रखने वाले को आशीष और कृपा प्राप्त होती है। वे इस तथ्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराते हैं कि प्रज्ञा करीबी दोस्ती के महत्व को समझाती है, जो संकट के समय में खून के रिश्तों से भी अधिक मददगार सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार 27वें अध्याय के प्रथम पदों में भी सूक्ति ग्रंथ का लेखक अहंकार से बचने, मूर्ख व्यक्ति की संगति न करने तथा क्रोध, ईर्ष्या और उन्माद के प्रलोभन में न पड़ने की सलाह देता है। पहले पद में भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के विरुद्ध एक अच्छी चेतावनी दी गई है। आप अपने आप पर घमंड न करें और न ही कल के बारे में या आने वाले दिनों के बारे में डींग मारें, क्योंकि ऐसा करना कल के लिए तैयारी करने से मनुष्य को रोक देता है। हम अपने आप से यह वादा नहीं करें कि हमारा जीवन और सुख सुविधाएं कल और सब समय तक जारी रहेंगी, बल्कि हम ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित रहें। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 34वें पद में प्रभु यीशु ख्रीस्त का भी यही परामर्श है कि हम कल की चिंता न करें, क्योंकि कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। इसी प्रकार संत याकूब भाइयों को प्रेषित अपने पत्र में ध्यान आकर्षित कराते हैं कि भविष्य अनिश्चित है। कहते हैं, आपका जीवन एक कुहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। आप लोगों को यह कहना चाहिए कि यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। आगे 27वें अध्याय के दूसरे पद में लेखक कहता है, दूसरे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम अपनी प्रशंसा मत करो। तुम्हारा मुख नहीं बल्कि पराए व्यक्ति ऐसा करें। श्रोताओ, अपने मुख अपनी प्रशंसा करना मूर्खों का कार्य है, यह प्रज्ञावान को शोभा नहीं देता। इसलिए यदि दूसरे हमारी प्रशंसा करें तो बेहतर है। हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें। हमारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए और हमें ऐसे भले कर्मों में लगना चाहिए जिसके लिए हम प्रशंसा और सराहना के पात्र बने। अपने मुख अपनी प्रशंसा करना घमंड मूर्खता और आत्म प्रेम का सबूत है जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बहुत कम कर देता है। इसीलिए संत पॉल फिलिप्पियों को प्रेषित पत्र के चौथे अध्याय के 8वें पद में लिखते हैं, भाइयों जो कुछ सच है आदरणीय है, जो कुछ न्याय संगत है निर्दोष है, जो कुछ प्रीतिकर है मनोहर है, जो कुछ उत्तम है प्रशंसनीय है, ऐसी बातों का मनन किया करें। और अब आइए 27वें अध्याय के चौथे और पांचवें पदों पर दृष्टिपात करें। लेखक कहता है, क्रोध क्रूर होता है और उन्माद दुर्दमनीय, किंतु ईर्ष्या के सामने कौन टिक सकता है। अव्यक्त प्रेम से सुस्पष्ट फटकार कहीं अधिक अच्छी है। मित्र द्वारा किया हुआ घाव उसकी ईमानदारी का प्रमाण है, किंतु शत्रु का आलिंगन कपटपूर्ण है। श्रोताओ, यहाँ स्पष्ट शब्दों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक क्रोध उन्माद और ईर्ष्या की निंदा करता है। उसका कहना है कि जो व्यक्ति अपने जुनून पर काबू नहीं रख पाते, जो क्रोध को नियंत्रण में नहीं रख पाते, वे मूर्ख होते हैं, क्योंकि क्रोध में आने पर वे जो कुछ कहते हैं उसका उन्हें खुद पता नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति एक बड़े पत्थर या रेत के भार से भी अधिक कष्टदायक होते हैं। वे मूर्ख होते हैं क्योंकि वह भारी पत्थर उन्हीं पर भारी पड़ सकता है, वे उसके बोझ तले दब सकते हैं। अस्तु, लेखक का परामर्श है कि अपने क्रोध को हमेशा नियंत्रण में रखा जाए, और यदि सामने वाला ऐसा करता है तो उसके रास्ते से हट लिया जाए। फिर कहता है, क्रोध करने वाला तो मूर्ख है, किंतु उससे भी अधिक खतरनाक वे लोग हैं जो ईर्ष्या करते हैं। वे लोग जो मन ही मन अन्यों के प्रति द्वेष रखते हैं, दूसरे के प्रति मन में गुप्त शत्रुता रखना, उसकी समृद्धि पर ईर्ष्या करना, दूसरे की भलाई पर दुखी होना, या फिर किसी चोट या अपमान का बदला लेने की इच्छा मन में पाले रखना, कहीं अधिक दुष्टतापूर्ण कृत्य हैं। ऊपरी मन से प्रेम करना लेकिन मन में शत्रुता का भाव रखना कपटपूर्ण है, जिससे बचने की उक्त सूक्ति में सलाह दी गई है। लेखक कहता है कि यही उत्तम है कि हमारी गलतियों के लिए हमारा मित्र हमें डांटे और हमारी खामियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराए, ताकि हम उन्हें सुधार सकें। यदि हमारे दिल में मित्र के प्रति सच्चा प्रेम है तो हमारा व्यवहार मित्र के प्रति सच्चा और स्पष्ट होगा। जैसा कि बाइबल धर्म ग्रंथ के लेवी ग्रंथ के 19वें अध्याय के 17वें पद में आदेश दिया गया है, लिखा है, अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उसे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। आगे 27वें अध्याय के 7वें पद में लेखक कहता है, जिसका पेट भरा होता है वह मधु का भी तिरस्कार कर देता है, किंतु जिसका पेट खाली है उसे कड़वा भी मीठा लगता है। जिसका पेट भरा होता है वह मधु का भी तिरस्कार करता है, जिसका पेट खाली है उसे कड़वा भी मीठा लगता है। श्रोताओ, सूक्ति ग्रंथ में बारंबार यह देखा गया है कि लेखक सुलेमान ने यह दर्शाना चाहा है कि गरीब होना कई मायनों में अमीर होने से बेहतर है, इसलिए कि गरीब अपने आनंद का स्वाद अमीरों से बेहतर लेते हैं। यह तो हम सब जानते हैं और यह स्वाभाविक भी है कि जब व्यक्ति को सचमुच में भूख लगती है तब चटनी रोटी या दाल रोटी भी उसके लिए उत्तम से उत्तम भोजन होता है, और ऐसे भोजन में एक प्रकार से समझदारी पूर्ण सुखदता होती है, ऐसा सुख जिसका आनंद उन लोगों के लिए अजनबी ही होता है जो लोग हर दिन शानदार भोजन करते हैं, जबकि जिनके पास अपने आवश्यक भोजन से अधिक और कुछ नहीं होता उनके लिए सूखी रोटी भी मीठी और आनंददायी होती है। वे इसे आनंद से खाते हैं और इससे तरोताजा रहते हैं। संत लूकस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 53वें पद से ऐसा ही प्रतीत होता है कि पवित्र कुंवारी मरियम इसी बात का उल्लेख कर रही थी जब उन्होंने प्रभु का गुणगान करते हुए कहा था, उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने स्पेन के सेविले में भाईचारा और लोकप्रिय धर्म निष्ठा सम्मेलन के प्रतिभागियों से भक्ति, एकता और उदारता के कार्यों के माध्यम से मसीह के प्रेम को मूर्त रूप देने का आग्रह किया। पोप फ्रांसिस ने बुधवार को सेविले में आयोजित भाईचारा और लोकप्रिय धर्म निष्ठा के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा। उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत सेविले के लोगों की अनूठी भक्ति को पहचानते हुए की। पोप ने कहा कि यह जीवंत विश्वास न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा है बल्कि एक सामुदायिक यात्रा भी है जो कलीसिया के जीवन को आकार देती है। पोप फ्रांसिस ने अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि लोकप्रिय धर्म निष्ठा की असली प्रभावशीलता मसीह को दुनिया में लाने की इसकी शक्ति में निहित है। उन्होंने संत मानुएल गोंजालेस का हवाला दिया जिन्होंने ख्रिस्तीय जीवन को एक पूरी यात्रा के रूप में वर्णित किया है जो ख्रिस्त से शुरू होकर लोगों में समाप्त होती और लोगों से शुरू होकर ख्रिस्त में समाप्त होती है। उन्होंने समझाया कि यह यात्रा लोगों को ईश्वर के करीब लाने के कलीसिया के मिशन के बारे बतलाती है। पोप ने इन भक्तियों की विविधता में पाई जाने वाली एकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बतलाया कि कैसे कई विशिष्टताएं प्रेरिताएं और कार्य दृढ़ता एवं धैर्य के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, चाहे क्रूस उठाना हो या केवल प्रार्थना में साथ देना हो। पोप ने कहा, यह वही उत्साह वही प्रेम है जो सामूहिक सामंजस्य बनाता है जो मसीह की सुंदरता को प्रकट करता है। उन्होंने विश्वासियों से आह्वान किया कि वे मसीह को सड़कों पर ले जाना जारी रखें ताकि सभी उनकी सुंदरता देख सकें। भक्ति के क्षणों के दौरान बहाए गए आंसू के बारे बोलते हुए पोप ने दुख और प्रेम के इन कार्यों को ईश्वर के प्रति प्रेम से पागल कहा जो कुछ लोगों को समझ से परे लग सकता है, लेकिन यह विश्वास का एक प्रभावशाली साक्ष्य है। उन्होंने एक बार फिर संत मानुएल को उद्धृत किया जब उन्होंने कहा, लोगों में सत्य, स्नेह, कल्याण, न्याय, स्वर्ग और शायद बिना एहसास के ईश्वर के लिए भूख है। पोप ने विश्वासियों से आग्रह किया कि वे उदारता के कार्यों के माध्यम से इस भूख का जवाब दें, शारीरिक और आत्मा में पीड़ित लोगों तक ईश्वर की कोमलता पहुंचाएं। अपने संदेश को समाप्त करते हुए पोप फ्रांसिस ने सम्मेलन में भाग लेने वालों को अच्छे चरवाहे के उदाहरण का अनुसरण करते हुए अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अंत में कहा कि भक्ति केवल अनुष्ठान नहीं है बल्कि मसीह के प्रेम को दुनिया में लाने का तरीका है। पोप फ्रांसिस ने 5 दिसंबर को स्लोवेनिया की राष्ट्रपति नताशा पिराक मुसा से वैटिकन के प्रेरितिक प्रसाद में मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन और वैटिकन के विदेश उप सचिव मॉन्सिन्योर मिरोस्लाव वाकोवास्की से भी मुलाकातें की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा 5 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सचिवालय में हुई सौहार्दपूर्ण वार्ता के दौरान परमधम पीठ और स्लोवेनिया गणराज्य के बीच अच्छे संबंधों पर चर्चा की गई तथा कलीसिया राज्य संबंधों में कुछ खुले प्रश्नों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें स्लोवेनियाई समाज में कात्तिक कलीसिया के योगदान पर प्रकाश डाला गया। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान दिया गया, जिसमें पश्चिमी बालकान क्षेत्र और मध्य पूर्व तथा यूक्रेन में संघर्षों पर विशेष ध्यान दिया गया। बृहस्पतिवार को संत पापा फ्रांसिस ने सक्सोनी के पौत्रात्मा की कैनोनिस धर्म बहनों से भी मुलाकात की, जिसकी स्थापना रोम में धन्य गुवेदी मॉन्टपेलियर ने की है। यह मुलाकात पोप द्वारा 18 मई 2024 को 12वीं सदी के फ्रांसिसी धर्म संघी को धन्य की उपाधि प्रदान करने के बाद हुई है, जिससे उन्होंने गरीबों का विनम्र एवं विनीत सेवक कहा है। गुरुवार को कैनोनिस धर्म बहनों से मुलाकात करते हुए पोप ने उनके मिशन को याद किया, जो खुद को मुख्य रूप से गरीबों की देखभाल और सेवा के लिए समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि धन्य गुवेदी मॉन्टपेलियर ने पौत्र तृतीय के नाम पर समुदाय की शुरुआत की और पोप इनोसेंट तृतीय द्वारा बुलाए गए धार्मिक जीवन के सुधार का जवाब देने की कोशिश की। पोप ने कहा, यह देखना दिलचस्प है कि ईश्वर की योजना हृदय की रसोई में कैसे परिपक्व होती और कैसे स्वाद एवं रंग धीरे धीरे जीवन के नियमों में व्यक्त होते हैं और अंततः पूरी कलीसिया में अपनी खुशबू बिखेरते हैं। पोप ने एकता, निर्धनता और सेवा के महत्व के साथ साथ उनके बीच के संबंध पर भी प्रकाश डाला। कैनोनिस धर्म बहनें निर्धनता का व्रत लेती हैं, जिसके तहत उन्हें व्यक्तिगत चीज के बिना रहना पड़ता है। पोप ने कहा कि यह शपथ एक कठोर संयमित एवं अलग जीवन की आधुनिक समझ से परे है। उन्होंने कहा, इसका अर्थ यह स्वीकार करना है कि हम पौत्र तृत्व के घर में एक अतिथि हैं, जो हमारा स्वागत करते और अपना निवास उन गरीबों के साथ साझा करते हैं जिनकी सेवा करने के लिए हमें बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि निर्धनता का व्रत सहभागिता से बहुत करीबी से जुड़ा है और इसमें बिना किसी शर्त के अपने भाइयों और बहनों के माध्यम से खुद को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित करना है। अंत में संत पापा ने सक्सोनी में पौत्र आत्मा की कैनोनिस धर्म बहनों को अपने दिलों एवं समुदायों में पौत्र तृत्व के जीवंत मंदिर बनाने हेतु काम करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, धर्म संघ के जीवन पौत्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर ईश्वर की ओर यात्रा है, जिसमें हम उद्धारक मसीह के अनुयायी बनते हैं, जो सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे। जयंती वर्ष 2025 का उद्घाटन जब अत्यंत करीब आ चुका है, पोप फ्रांसिस ने विश्वासों का आह्वान किया है कि वे ईश्वर पर अपने भरोसे को सुदृढ़ करें। उन्होंने 5 दिसंबर को अपने एक संदेश के माध्यम से कहा, जयंती वर्ष 2025 ईश्वर पर हमारी उस आशा से पूर्ण होगा जो कभी फीकी नहीं होती, या हमें कलीसिया में, हमारे पारस्परिक संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा एवं सृष्टि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के हमारे कार्य में हमारे विश्वास को नवीनीकृत करने में मदद करे। संत पापा फ्रांसिस शनिवार 7 दिसंबर को शाम 4 बजे संत पेत्रुस महागिरजा घर में कार्डिनल रचना की धर्म विधि सम्पन्न करते हुए 21 नए कार्डिनलों को लाल टोपी और अंगूठी प्रदान करेंगे तथा 8 दिसंबर को उनके साथ पावन क्रिस्त्याग अर्पित करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।